इसी अकेले पहाड़ पर तू मुझे मिला था, यही बुलंदी है वसल तेरा, यही है पत्थर मेरी वफा का। उजाड़ चटियल उदास वीरा, मगर मैं सदियों से इससे लिपटी हुई खड़ी हूँ। फटी हुई ओढ़नी में सांसें तेरी समेटे, हवा के वहशी बहाव पर उड़ रहा है दामन। संभाला लेती हूँ पत्थरों को गले लगाकर, नुकीले पत्थर जो वक्त के साथ मेरे सीने में इतने गहरे उतर गए हैं कि मेरे जीते लहू से सब आसपास रंगीन हो गया है। मगर मैं सदियों से इससे लिपटी हुई खड़ी हूँ, और एक ऊंची उड़ान वाले परिंद के हाथ तुझको पैगाम भेजती हूँ। तू आके देखे तो कितना खुश हो कि संगरेजे तमाम याकूत बन गए हैं, दमक रहे हैं, गुलाब पत्थर से उग रहा है।
हाजरीन आदाब, रेख्ता पॉडकास्ट के इस बेहद खास एपिसोड में आप सबका इस्तकबाल है। हाजरीन, फहमीदा रियाज का शुमार उर्दू की उन गिनी चुनी महिला कवियों में किया जाता है जो जिंदगी भर अपनी शायरी को हथियार बनाकर समाज की दकियानूसी सोच और औरत के बारे में उसके जालिमाना रवैये के खिलाफ लड़ती रहीं। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर हम इसी शायरा को खिराज पेश कर रहे हैं।
कई आवाजों की एक आवाज, रेख्ता पॉडकास्ट।
१९६७ में अपने पहले काव्य संग्रह पत्थर की जबान की इशात से लेकर 2018 में हुए अपने निधन तक उन्होंने मुसलसल अपनी इस लड़ाई को जारी रखा। फहमीदा रियाज के लिए राजनीति, धर्म और समाज में जमे हुए दकियानूसी ढांचे के साथ ये पैकार बहुत कठिनाइयों भरी साबित हुई। उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दायर किए गए, फहाशी के इल्ज़ाम लगे। जनरल ज़ियाउल हक के शासन काल में उन पर ज़मीन इस कदर तंग की गई कि उन्हें पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान में सियासी पनाह ढूंढनी पड़ी। ज़ियाउल हक के निधन के बाद वो वापस पाकिस्तान लौट सकी। उन्हीं दिनों हिंदुस्तान में रहते हुए उन्होंने महसूस किया कि दोनों मुल्क अतिवाद और कट्टरता के रास्ते पर एक ही समत में बढ़े चले जा रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने अपनी बहुचर्चित कविता तुम बिल्कुल हम जैसे निकले लिखी, जो दोनों मुल्कों पर एक करारा तंज था। तो चलिए आपको वही नज्म सुनाते हैं। तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहां छुपे थे भाई, वो मूर्खता वो घामड़पन जिसमें हमने सदी गवाई, आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे, अरे बधाई तुम्हें बधाई। प्रीत धर्म का नाच रहा है, कायम हिंदू राज करोगे, सारे उल्टे काज करोगे, अपना चमन ताराज करोगे। तुम भी बैठे करोगे सोचा, पूरी है वैसी तैयारी, कौन है हिंदू कौन नहीं है, तुम भी करोगे फतवा जारी। होगा कठिन यहां भी जीना, दांतों आ जाएगा पसीना, जैसी तैसी कटा करेगी, यहां भी सबकी सांस घुटेगी। भाड़ में जाए शिक्षा विक्षा, अब जाहिलपन के गुनगाना, आगे गढ़ा है ये मत देखो, वापस लाओ गया जमाना। मश्क करो तुम आ जाएगा, उल्टे पांव चलते जाना, ध्यान न दूजा मन में आए, बस पीछे ही नजर जमाना। एक जाप सा करते जाओ, बारंबार यही दोहराओ, कैसा वीर महान था भारत, कितना आलीशान था भारत, फिर तुम लोग पहुंच जाओगे, बस परलोक पहुंच जाओगे। हम तो हैं पहले से वहां पर, तुम भी समय निकालते रहना, अब जिस नरक में जाओ वहां से चिट्ठी विट्ठी डालते रहना। तो हाजरीन, फहमीदा रियाज का जन्म 28 जुलाई 1946 को हिंदुस्तान के शहर मेरठ में हुआ। उनके पिता रियाजुद्दीन, जिनका निधन फहमीदा के बचपन में ही हो गया था, एक शिक्षाविद के तौर पर जाने जाते थे। फहमीदा का खानदान विभाजन के बाद लाहौर चला आया। यहीं रहकर फहमीदा ने अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त की और हैदराबाद सिंध के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से बीए किया। 1967 में वो लंदन चली गई और बीबीसी उर्दू में अपनी सेवाएं दी। लंदन में रहते हुए उन्होंने शादी की और एक बच्चे की माँ भी बनी, लेकिन उनका विवाहित जीवन बहुत जल्दी बिखर गया। 1972 में वो वापस पाकिस्तान चली आईं और यहाँ अपनी दूसरी शादी से पहले कई साल तक एक मुतलक्का मुलाजमत पेशा औरत की जिंदगी गुजारी। फहमीदा की जिंदगी में आ रहे इन उतार चढ़ाव और उथल पुथल के तमाम नकोश उनकी इस दौर की कविताओं में मिलते हैं। आरजूमंदी, ममता, इज्जतवाजी मोहब्बत जैसी कविताएं उनके ऐसे रोज नामचे की तरह नजर आती हैं जिसमें वो खुद पर गुजर रहे हर रोज के जीवन के नक्श उतार रही हो। ये नक्श बहुत तीखे, डरावने और विचलित कर देने वाले हैं।
कि एक अजीज दोस्त ने, इसका नाम है इस गली के मोड़ पर, हम कहाँ पहुंचे, किस किस मोड़ पे पहुंचे, इस गली के मोड़ पर, तो कहते हैं कि एक अजीज दोस्त ने मेरे अश्क पहुँच कर आज मुझसे ये कहा, यूं ना दिल जलाओ तुम। ठीक है ना, एक अजीज दोस्त ने मेरे अश्क पहुँच कर आज मुझसे ये कहा, यूं ना दिल जलाओ तुम, लूट मार का है राज, जल रहा है कुल समाज, ये फजूल रागनी मुझको मत सुनाओ तुम, बुर्जुआ समाज है, लूट मार चोरियां, इसका वस्फ खास है, इसको मत भुलाओ तुम, इनकलाब आएगा उससे लो लगाओ तुम, हो सके तो आजकल माल कुछ बनाओ तुम, ठीक है ना, हो सके तो आजकल माल कुछ बनाओ तुम, खाई से निकलने की आरजू से पेशतर देख लो जरा जो है दूसरी तरफ गढ़ा, आज हैं जो हुक्मरान उनसे बढ़ के खौफनाक, उनके सब रकीब हैं, दंदना रहे हैं जो लेके हाथ में छुरा, शुक्र का मुकाम है मेरी मस्खलाश आपको कहीं मिली नहीं एक गली के मोड़ पर। मैंने पूछा वाकई सुन के मुस्कुरा दिया, उसके बाद क्या हुआ, सुन के मुस्कुरा दिया, कितनी देर हो गई, लीजिए मैं अब चला, उसके बाद क्या हुआ, खड़खड़ाई हड्डियाँ, उस गली के मोड़ से वो कहीं चला गया। मतलब कि ये है ही मुर्दा जो लोग कह रहे हैं कि भाई करप्शन के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, प्रोबेबली वी आर ऑलरेडी डेड।
फहमीदा रियाज ने बहुत कम उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। 15 बरस की उम्र में उनकी नज़में अहमद नदीम कासमी की सर्वश्रेष्ठ समझी जाने वाली साहित्यिक पत्रिका फ़नून में प्रकाशित होने लगी थीं। अहमद नदीम कासमी ने इन कविताओं को पढ़कर इस नौजवान शायरा की अजमत का अंदाज़ा लगा लिया था और इसका हौसला बढ़ाने के लिए ना सिर्फ उसे अपनी पत्रिका में जगह दी बल्कि उसकी प्रशंसा भी की। लेकिन कासमी को ये अंदाज़ा शायद ही रहा हो कि जिस शायरा की वो प्रशंसा कर रहे हैं वो 20वीं सदी के चंद एक बेहतरीन लिखने वालों में गिनी जाएगी। फहमीदा रियाज का पहला काव्य संग्रह पत्थर की जबान 21 बरस की आयु में प्रकाशित हुआ। इसमें शामिल तमाम कविताएं उनके कॉलेज के समय की कही हुई हैं। इस संग्रह की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा था, जब तक कोई कविता उन्हें खुद ही मजबूर ना कर दे कि वो उसे लिखें तब तक वो कोई कविता नहीं लिखेंगी। मैंने गजल इसलिए नहीं लिखी कि मैं रदीफ और काफिये की खातिर शेर नहीं कहना चाहती। फहमीदा रियाज की यही सोच थी जिसने आरंभ से ही उन्हें दूसरे कवियों और कवित्रियों से अलग बनाए रखा। वो गजल की विधा में की जाने वाली फार्मूलाबाज कस्म की शायरी से दूर रहीं। जायका बदलने के लिए कुछ गजलें कहीं भी तो उन पर भी अपनी फिक्र की छाप छोड़ी। अब उनकी गजलों के कुछ शेर देखिए। किससे अब आरजुए वसल करें, किससे अब आरजुए वसल करें, इस खराबे में कोई मर्द कहां, मेरी बेबसी मुझ पे जाहिर है लेकिन, मेरी बेबसी मुझ पे जाहिर है लेकिन, तुम्हारी तमन्ना, तुम्हारी तमन्ना, चलते चलते कुछ थम जाना, फिर बोझल कदमों से चलना, चलते चलते कुछ थम जाना, फिर बोझल कदमों से चलना, ये कैसी कसक सी बाकी है जब पांव में वो कांटा भी नहीं। फहमीदा नहीं चाहती थी कि जो कुछ वो कहना चाहती हैं काफिये और रदीफ उसके आड़े आए। वो बहुत साफ और बेबाक अंदाज में मजहब, समाज और सियासत की फैलाई हुई खुराफातों और औरत के तई समाज के आमिराना रवैये के खिलाफ बात करने की ख्वाहां थी। फहमीदा रियाज ने अपने पहले काव्य संग्रह के प्रकाशित होते ही उर्दू के साहित्यिक समाज को चौंका दिया था। उर्दू में पहली बार किसी औरत की तरफ इस किस्म की रोमानी और औरत की सेक्सुअल डिजायर पर मबनी कविताएं वजूद में आई थी। लेकिन दूसरे काव्य संग्रह बदन दरीदा के जरिए फहमीदा रियाज ने एक और जस्त लगाई। ये जस्त इतनी आगे की और इतनी अनपेक्षित थी कि खुद फहमीदा रियाज के प्रशंसकों के लिए उसे सहन करना मुश्किल हो गया और इस किताब पर हर तरफ से आपत्तियां आने लगी। औरत की कामुकता, उसके जिंसी वजूद, बदन की ख्वाहिशात और इश्क के नाम पर उसके साथ खेले जाने वाले खेल के खिलाफ एहतजाज जैसे विषयों पर आधारित ये कविताएं उर्दू समाज के लिए नई थी। इससे पहले सिर्फ इस्मत चुगताई ने अपनी कहानियों में औरत के जिंसी तजर्बात को हैरान कर देने वाली साफगोई से लिखा था। अब फहमीदा रियाज की ये नज्म सुनिए जिसका उन्वान है मुकाबलाए हुस्न। कुहलों में भंवर जो हैं तो क्या है, सर में भी है जुस्तजू का जौहर, था पाराए दिल भी जेरे पिस्ता, लेकिन मेरा मोल है जो इन पर, घबरा के न यूं गुरेज पाहूं, पैमाइश मेरी खत्म हो जब अपना भी कोई उज्व ना पो। और इसी के साथ मैं फहमीदा रियाज की एक और नज्म जिसका उन्वान है इनकलाबी औरत आपको सुनाने की इजाजत चाहता हूं। रणभूमि में लड़ते लड़ते मैंने कितने साल, एक दिन जल में छाया देखी चट्टे हो गए बाल, पापड़ जैसी हुई हड्डियां, जलने लगे हैं दांत, जगह जगह झुर्रियों से भर गई सारे तन की खाल, देख के अपना हाल हुआ फिर उसको बहुत मलाल, अरे मैं बुढ़िया हो जाऊंगी आया ना था ख्याल, उसने सोचा गर फिर से मिल जाए जवानी, जिसको लिखते हैं दीवानी और मस्तानी, जिसमें उसने इनकलाब लाने की ठानी वही जवानी, अब की बार नहीं दूंगी कोई कुर्बानी, बस लाहौल पढ़ूंगी और नहीं दूंगी कोई कुर्बानी, दिल ने कहा कि सोच में है ए पागल बुढ़िया, कहाँ जवानी, यानी उसको गुजरे अब तक काफी अरसा बीत चुका है, ये ख्याल भी देर से आया, बस अब घर जा, बुढ़िया ने कब उसकी मानी, हालांकि अब वो है नानी, जाहिर है अब और वो कर भी क्या सकती थी, आसमान पर लेकिन तारे आंख मिचोली खेल रहे थे, रात के पंछी बोल रहे थे और कहते थे ये शायद उसकी आदत है, ये शायद उसकी फितरत है। तो दोस्तों, फहमीदा रियाज को इस्मत के साथ उर्दू समाज के व्यवहार का भी पूरा अंदाजा था और वो जानती थी कि बदन दरीदा का प्रकाशन उनके लिए कितनी कठिनाइयों भरा साबित होगा। उन्होंने बदन दरीदा के दिबाचे में अपनी इन चिंताओं और इरादों को ये लिखकर जाहिर किया था, कारगाए हस्ती में किसी हसास जी रूह पर वो मुकाम नहीं आया होगा जब उसने खुद को मक्तल के दरवाजे पर ना पाया हो, जब उसे अपने वजूद की कीमत नकदे जान से ना चुकानी पड़ी हो, लेकिन जब जान से गुजरना ही ठहरा तो सर झुकाकर क्यों जाएं, क्यों ना उस मक्तल को रज्मगाह बना दें, आखिर सांस तक जंग करें, सो मैंने भी अपनी गर्दन झुकी हुई नहीं पाई। मेरी नज़में जो आपके सामने हैं एक रजज हैं, जिन्हें बुलंद आवाज से पढ़ती हुई मैं अपने मक्तल से गुजरी, इस लिहाज से बदन दरीदा एक रज़मिया है। फहमीदा रियाज का यह भी मानना था कि ये आपत्तियां इसलिए ज्यादा हो रही हैं क्योंकि मैं एक औरत हूं और औरत की तरफ से मर्दों का समाज इस तरह की बातें सुनना गवारा नहीं करता। अभी हमारे समाज को बहुत आगे जाना है और औरत को एक इंसान ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंसान की तरह स्वीकार करना है, उसके दिमाग के साथ भी और उसके जिस्म के साथ भी। अभी तो ये हालत है कि उर्दू वाले मुझे गर्दन जदनी करार दे चुके हैं, लेकिन तनाजा से नहीं डरना चाहिए, वरना इंसानी सोच कभी भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकेगी। फहमीदा रियाज ने अपने पहले काव्य संग्रह के प्रकाशन के समय ही ये कह दिया था कि वो कोई कविता जब तक नहीं लिखेंगी जब तक कि वो कविता उन्हें लिखने के लिए मजबूर ना करें। ये मजबूरियां उनके सामने हमेशा आती रहीं, कभी औरतों पर हो रहे जुल्म और मसाइब को देखकर, कभी सियासत और सत्ता की मनमानियों और आवाम की बदहाली को देखकर। पाकिस्तान से अपनी जिलावतनी के समय फहमीदा रियाज ने हिंदुस्तान में रहकर जियाउल हक की तानाशाही के खिलाफ एहतिजाज और बगावत की सबसे ज्यादा सख्त शायरी लिखी। यहां रहकर उनका काव्य संग्रह क्या तुम पूरा चांद ना देखोगे प्रकाशित हुआ। विख्यात पाकिस्तानी कथाकार और आलोचक फतेह मोहम्मद मलिक इस किताब के बारे में लिखते हैं, 5 तवील अबवाब और एक आखिरी गीत पर मुश्तमिल ये किताब जियाउल हक के दौरे आमीरियत में वतन के बाशिंदों पर बेतहाशा ढाए गए मजालिम की शेरी दस्तावेज है। हमारे यहाँ इस जुर्रत व एतमाद के साथ किसी और शख्स ने बागियाना शायरी नहीं की। बगावत का ये हौसला उस रूहानी एहसास का करिश्मा है जो फहमीदा रियाज की शायरी में जिंदगी की तारीकियों में नूर की किरणें बनकर यहाँ वहाँ चमक उठता है। जिया का दौर फहमीदा रियाज पर बहुत सख्त गुजरा। उन्होंने प्रगतिशील विचारों को आम करने वाली पत्रिका आवाज जारी की। जनरल जियाउल हक के दौर में इस पत्रिका पर भी हुकूमत का गुस्सा बरसा, फिर सरकारी पाबंदियों का शिकार हुई। फहमीदा रियाज के व्यक्तित्व का एक और पहलू ऐसा है जो उन्हें अपनी तरह की वाहिद शायरा और लेखिका के तौर पर सामने लाता है। अपने कॉलेज के दिनों से ही उनका झुकाव बाएं बाजू की प्रगतिशील सोच की तरफ रहा। एक फ़ाल मार्क्सवादी के तौर पर उन्होंने जीवन बिताया, लेकिन इसी के साथ ना सिर्फ तसव्वुफ और सूफी शायरी में उनकी दिलचस्पी रही बल्कि उन्होंने ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार, जलालुद्दीन रूमी, शाह अब्दुल लतीफ भटाई, शेख अयाज, शेख सादी शिराजी के सूफी कलाम का उर्दू अनुवाद किया। फहमीदा रियाज को उर्दू वालों से हमेशा ये शिकायत रही कि बड़े बड़े उर्दू वाले उनका नाम तक नहीं लेना चाहते। एक गुफ्तगू में उन्होंने कहा, ये सब मुझ पर लिखने से खौफजदा रहते हैं क्योंकि जो मैंने लिखा वो मुतनाज़ा था और ये लोग किसी तनाज़े में नहीं पढ़ना चाहते थे। जमील जालबी तक ने कहीं मेरा तज़किरा नहीं किया, जैसे कि मैं वजूद ही नहीं रखती, हालांकि मैं तो बरसों से लिख रही हूँ। 1946 को जन्मी फहमीदा रियाज 2018 में इस दुनिया से रुखसत हो गई। अपने इस 72 साल सफ़र में उन्होंने इतना कुछ किया और इतना कुछ यादगार छोड़ा कि लोगों को ये सब करने के लिए कई जीवन दरकार होते हैं। एक मुख्तसर अलालत के बाद वो इस दुनिया से चली गईं, लेकिन उनका कहा और लिखा आज भी वैसा ही तरोताज़ा है और उनके प्रतिद्वंदियों के लिए वैसा ही खतरनाक है जैसा अपने लिखे जाने के समय में था। पाकिस्तान की प्रसिद्ध लेखिका और कॉलम लेखक आमना मुफ्ती ने फहमीदा रियाज को उनके निधन के बाद याद करते हुए लिखा था, 72 साल के इस वक्फे में रोशन आंखों, खड़ी नाक और घुंघराले बालों वाली इस औरत ने दुनिया को नाकों चने चबवाए रखे। ये औरत ना कोई मुजाहिदा थी, ना किसी बड़ी ताकत की जासूस, ना उसके पास तीर थे ना तुफंग। आपके मेरे जैसे दो हाथ, दो पांव और 10 उंगलियां, जिनमें से 3 उंगलियों से कलम पकड़ के वो लिखती चली जाती थी और उसके लफ्जों के तेजाब से बड़ी बड़ी मूछों वाले मर्दों और मालो मनाल वाले बादशाहों के महलों की मीनार गलना शुरू हो जाते थे।
देखिए, एक ये हमारी नज़्म है जिसका उन्वान है ज़बानों का बोसा, ठीक है ना। अब इस पर बहुत ही एतराज़ात हुए कि ये तो बड़ी ही, जैसे कहना चाहिए कि ऑब्सीन है। अब बात ये है कि एक चीज़ होती है जो कि फिज़िकल है, लेकिन उस फिज़िकल की एक मेटाफिज़िक्स है, ठीक है ना। मुझको ये हमेशा लगा कि जो सेक्स है उसमें कोई राज है, पूरी सृष्टि का कोई राज इसके अंदर है, ठीक है ना। ये इतना क्लियर नहीं था, लेकिन आपको इस नज़्म में वो नज़र आ सकता है, लेकिन उस पर किसी की नज़र नहीं गई क्योंकि मैं तो औरत थी और औरत होकर लिख रही थी, हाँ, तो शायद अगर ये कोई मर्द लिखता तो शायद दूसरा रिएक्शन होता, मगर नज्म यूं है। ज़बानों के रस में ये कैसी महक है, ये बोसा के जिससे मोहब्बत की सहबा की उठती है खुशबू, ये बदमस्त खुशबू जो गहरा गुनूदा नशा ला रही है। ये कैसा नशा है, मेरे जहन के रेजे रेजे में एक आंख सी खुल गई है। ये कैसा नशा है, मेरे जहन के रेजे रेजे में एक आंख सी खुल गई है। तुम अपनी जबां मेरे मुंह में रखे जैसे पाताल से मेरी जां खींचते हो, ये भीगा हुआ गर्म तारीक बोसा अमावस की काली बरसती हुई रात जैसे उमड़ती चली आ रही है। कहीं कोई साथ अजल से रमीदा मेरी रूह के दश्त में उड़ रही थी, वो साथ करीतर चली आ रही है। मुझे ऐसा लगता है तारीकियों के लरसते हुए पुल को मैं पार करती चली जा रही हूँ। ये पुल खत्म होने को है और अब इसके आगे कहीं रोशनी है। तो इसके ऊपर तो बहुत ही ज्यादा शोर शराबा की गया, इतनी ज्यादा गंदी तो क्या कर दी उफो। इसने क्या कर दिया।
तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रिमेम्बरिंग फहमीदा रियाज, रेख्ता पॉडकास्ट रितेश यादव के साथ। इस एपिसोड के राइटर हैं हुसैन अयाज। सुनते रहने के लिए इस पॉडकास्ट को फॉलो जरूर करें। ज्यादा मालूमात के लिए विजिट करें www.rekhta.org।